मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 9 फरवरी 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और साथ ही दोस्तों, इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अभी सितंबर अक्टूबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं इंद्रजीत व्यास, जो कनोरे राजस्थान से हैं, अविनाश यादव, जो बरेली उत्तर प्रदेश से हैं, रामू बर्मन, जो नागांव असम से हैं, दीपक कुमार, जो नई दिल्ली से हैं, और मुकेश चौरसिया, जो गाजीपुर से हैं। तो इंद्रजीत, अविनाश, रामू, दीपक और मुकेश, आप पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी क्रम में एक सूचना है जिसे आप एक अच्छी सूचना कह सकते हैं, और वो ये कि आप लोगों को मालूम ही है कि फरवरी का बैच ऑलरेडी पहले से ही फुल हो चुका है काफी दिनों से, और सितंबर के बैच के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। हम लोगों ने सोचा कि अभी सितंबर के बैच में जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्योंकि इस बीच में कुछ लंबा वक्त है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को कुछ फायदा मिलना चाहिए, कुछ आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए ₹1000 की उन्हें छूट दी जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों, जो स्टूडेंट सितंबर बैच के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अभी उन्हें ₹1000 का डिस्काउंट दिया जाएगा, और यह लाभ उन्हें भी मिलेगा जो स्टूडेंट ऑलरेडी सितंबर बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। एक बात विशेष रूप से कि यह केवल कुछ सीटों के लिए है, लिमिटेड सीट्स के लिए यह सुविधा अवेलेबल रहेगी, यह बेनिफिट अवेलेबल रहेगा। तो मित्रों, आप सब इसका लाभ लेने के बारे में सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इस सूचना के बाद अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, जो लाइफ मैनेजमेंट का स्टेज है। मित्रों, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, ये फिल्मी गीत है या इसे आप शेर भी कह सकते हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। डेफिनेटली आप लोगों ने कभी न कभी यह गीत तो सुना ही होगा, ये फिल्म का गीत है। और मित्रों, यह गीत मुझे आज विशेष रूप से बार बार इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने कल की न्यूज में ये सुना होगा कि निदा फाजली नहीं रहे। दरअसल ये निदा फाजली के लिखे हुए ही गीत हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा, हम लोगों का सौभाग्य रहा है कि निदा फाजली साहब को कई बार रूबरू सुनने का मौका मिला है, और कुछ ही समय पहले उन्हें यहां भोपाल में ही राजभवन में हम लोगों ने सुना था। तो निश्चित रूप से उनका इस तरीके से अचानक चला जाना कहीं न कहीं अंदर को एक शून्यता से भर देता है, एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है। और वैसे भी मित्रों, व्यक्तिगत रूप से भी मैं निदा फाजली जी के शेर व शायरी का, उनके गीतों का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, और आज जब यह खबर अखबारों में पढ़ने को मिल रही है और न्यूज में सुनने को मिल रही है कि अब वे नहीं रहे, तो निश्चित रूप से मन थोड़ा गमगीन है। और विशेषकर उनके नहीं रहने पर अब मैं अपने आप सभी श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम की ओर से और अपनी ओर से उनके प्रति विनम्र हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अपनी शरण में उन्हें जगह दे। मित्रों, निदा फाजली साहब ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था और इसके बाद अभी वो मुंबई में रह रहे थे। बहुत ही मझोले कद के शख्स थे, लेकिन उनके शेर व शायरी की और उनके गीतों की जो ऊंचाइयां हैं वो बहुत अद्भुत हैं, और कितने सारे उनके शेर व शायरी की लाइनें मुझे आज भी न केवल जुबानी याद है ही हैं, बल्कि जब मैं उन्हें दोहराता हूं तो मेरा गला भर आता है, और सच पूछे तो शरीर भी रोमांचित हो उठता है। मित्रों, मैंने शुरू में उनकी दो लाइनें आपसे अभी कोट की थी, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं इन दोनों लाइनों को ही आपके सामने एक लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से रखना चाहूंगा। फ्रेंड्स, हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना है और मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ी विडंबना है, और वो ये कि हम एक ही साथ एक ही समय में दो परस्पर विरोधी चीजें चाहते हैं। और हमारे लाइफ की ये जो सबसे बड़ी विडंबना है, जो सबसे बड़ा संकट है, मुझे लगता है कि इस संकट को निदा फाजली साहब की ये जो दो लाइनें हैं, ये बहुत बेहतरीन तरीके से हम सबके सामने रखती हैं। दो अलग अलग चीजें, दो चीजें नहीं, दो चीजें आप एक समय चाह सकते हैं और हो सकता है कि वो हो भी जाएं, लेकिन दो विपरीत चीजें जो अलग अलग ध्रुवों पर स्थित हैं, अलग अलग छोर पर मौजूद हैं, और हम चाहते हैं कि ये दोनों एक ही साथ मिल जाए। जैसे कि इन्होंने कहा, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। हम एक साथ जमीन को भी चाहते हैं और आसमान को भी चाहते हैं, ऐसा भला कैसे संभव है? और इसको इन्होंने नाम दिया, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मित्रों, मुझे लगता है कि ये सफलता का भी और जीवन को जीने का भी बहुत जबरदस्त मंत्र है। हमें कभी ये नहीं मान करके चलना चाहिए कि हमें पूरी दुनिया मिल जाएगी। पूरी दुनिया, यहां कहने का मतलब यह है कि हमने जो अपने दिमाग में सोच रखा है कि हमें ये मिले, ये कभी संभव नहीं है। मुकम्मल दुनिया कभी नहीं मिलती। कभी जमीन मिलता है, और जब जमीन मिलते हैं तो डेफिनेटली आसमान नहीं मिलेगा, और जब आसमान नहीं मिलेगा तो आपको जमीन नहीं मिलेगी। दो में से एक चुन लीजिए, आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ ही आपको दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। मित्रों, मैंने किसी शायर की लाइनें सुनी थी कि फिक्र हाकिम को बहुत है मगर आराम के साथ। मतलब जो शहर का लॉ एंड ऑर्डर देखने वाला जो ब्यूरोक्रेट्स है, पुराने जमाने की बात है, जिनको हाकिम कहते हैं, वो अपने शहर की बहुत फिक्र करते हैं कि हम उनके शहर में चैन और अमन और शांति रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके अपने अमन और शांति में कोई दखल न हो, सब कुछ वो आराम फरमाते रहें और नगर में शांति बनी रहे। मित्रों, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम सब भी इसी तरह की सोच, इसी तरह की आदतों के शिकार हैं? हम सब अपने जीवन में बड़ी बड़ी चीजें चाहते हैं। आप में से बहुत से हैं जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, बहुत से हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीए मतलब आईआईएम से एमबीए करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, इंडस्ट्रिस्ट बनना चाहते हैं, मतलब कुछ भी हम बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि ये सब आराम से हो जाए। इसके लिए हमें कुछ बड़ा न करना पड़े, कुछ तकलीफ न उठानी पड़े, सब हम सोचें और हमारे आंखों के सामने हाजिर हो जाए। मित्रों, यही जिसे मैंने कहा जीवन की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। ऐसा कैसे संभव है? कतई संभव है ही नहीं, और हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए संभव हो जाए। मैं अक्सर मित्रों एक बात बार बार याद दिलाने की कोशिश करता हूं, और खासकर अपने उन नौजवान साथियों को जो अभी अपने जीवन की यात्रा की शुरुआत दौर में ही हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कि दोस्तों बड़े की परिभाषा क्या है। आप लोगों ने कई बार ऑडियो में भी हो सकता है कि मेरी इस बात को सुना हो। बड़े की परिभाषा क्या है? बड़े की परिभाषा ही है जिसे बड़े तरीके से हासिल किया जा सके। यदि छोटे तरीके से कोई चीज मिलेगी तो वो कभी बड़ी हो ही नहीं सकती। सवाल उस बड़ेपन में नहीं है, उस वस्तु में नहीं है, याद रखिए, सवाल ये है कि आप उसको पाते कैसे, उसके पाने की प्रक्रिया क्या है। उस पाने की प्रक्रिया ने ही जो आप पा रहे हैं उसको बड़ा बनाया है, उसको सम्मान दिया है, उसको गरिमा दी है, उसको शक्ति दी है, उसको कीमत दी है, उसको रिकॉग्निशन दिया है, जो भी आप नाम दें, वो उस पाने की प्रक्रिया की देन है, अपने आप में उसकी देन नहीं है। जैसे एक बहुत ही सिंपल सी मैं बात कहूं, आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप कल्पना करके देखिए कि जिस दिन आईएएस बनना एकदम आसान हो जाएगा, उस दिन इसकी हालत क्या होगी? क्या आपको लगता है कि सच में ये जो आईएएस की जो सर्विस है, जो सिविल सर्वेंट बनने की जो गरिमा है, जो समाज में इसको जो प्रतिष्ठा मिली है, क्या उस समय भी वह प्रतिष्ठा उसी तरीके से रहेगी? इसकी प्रतिष्ठा है क्यों? इसकी प्रतिष्ठा इसलिए है क्योंकि ये सर्वोत्तम है, और सर्वोत्तम को पाने के लिए आपकी जो हमारी जो कोशिश भी होनी चाहिए वो सर्वोत्तम होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आईआईटीएंस आप बनना चाहते हैं, आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो अपने आप में टफ है। उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर जो लाखों स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, मेहनत कर करके बैठ रहे हैं, उनके बीच से भी अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। वहां भी आपको अपनी अलग पहचान एस्टैब्लिश करनी होगी, तब कहीं जाकर आप आईआईटीएंस बन सकेंगे। अदरवाइज सामान्य रूप से भी इंजीनियर बना जा सकता है, उसमें दिक्कत क्या है? एक आईआईटी इंस्टीट्यूशन भी आपको इंजीनियर बनाएगा, एक सामान्य सा इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपको इंजीनियर बनाएगा, और डिग्री जो दोनों को मिलेगी वो बीई की ही मिलेगी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की ही मिलेगी। तो जब आप बैचलर ऑफ इंजीनियर बन रहे हैं तो फिर आईआईटी में ही क्यों? क्योंकि वहां पहुंचना कठिन है, और अगर आप एक बार पहुंच जाते हैं तो फिर वो चार पांच साल का जो दौर होता है उसमें भी फिर आपको मांझा जाता है। ये नहीं कि फिर वहां जाकर के आप आराम फरमा रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि आप सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि फिर अब जितनी मेहनत करनी थी बनने में कर ली, अब तो आराम ही आराम है। नहीं, वहां जाकर के फिर से आपका सामना नई तरह की चुनौतियों से होगा। अब आप उन नई तरह की चुनौतियों को जितने अच्छे तरीके से फेस कर पाएंगे उतनी अच्छी आपकी पहचान बनेगी, उतनी अच्छी प्रतिष्ठा बनेगी, वहां एक अलग तरह का कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा। तो याद रखिए कि कोई भी ऐसी बड़ी चीज नहीं होती है जो आपको अंततः सुकून दे सके। राजा महाराजा जब राज्याभिषेक उनका होता था तो आप उनकी जिंदगी के बारे में सोच करके देखिए, आप उनके जो पहनावे हैं लक झक तक झक वाले दमकते हुए पहनावे, उन पर मत जाइए, उनके अधिकारों पर मत जाइए, उनकी इज्जत पर मत जाइए, उनसे लोग डरते थे उन पर मत जाइए, उनसे लोग प्यार करते थे उन पर मत जाइए। आप उनकी अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए कि राजा बनने के बाद क्या उनके पास एक मिनट के लिए भी अपनी जिंदगी के लिए वक्त था? एक मिनट का भी वक्त था अपनी जिंदगी के लिए? चाणक्य को उठा करके पढ़िए। चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो पूरी दिनचर्या बनाई है कि तुमको अपने जीवन के 24 घंटों को कैसे गुजारना है राजा बनने के बाद, आप आज भी उसे पढ़ेंगे तो शायद दहशत में आ जाए। अपने लिए कोई समय ही नहीं है, सोने के कुछ ही घंटे हैं, बाकी हर समय वो चंद्रगुप्त मौर्य लगातार मशीन की तरह काम में लगा हुआ, और वो काम भी कोई छोटे मोटे नहीं है, कोई उनके घर का काम नहीं है, राज्य का काम है, जिसकी चर्चा होगी, जिसके बारे में लोग बातें करेंगे, उससे प्रशंसा भी मिलेगी, आलोचना भी होगी, तकलीफें भी बढ़ सकती हैं, सुख भी बढ़ सकते हैं, वो इतिहास का हिस्सा होगा। सोच करके देखिए कि ऐसा व्यक्ति किस रूप में अपने जीवन को महसूस करता होगा। तो मित्रों, मुझे लगता है कि हम सब जनाब निदा फाजली जी को सच्ची श्रद्धांजलि केवल उनके जो लिखे गए जो लफ्ज हैं, जो शब्द हैं, उनको अपने जीवन में उतार कर दे सकेंगे। और सबसे खूबसूरत जो उनका जो दो लाइनें हैं वो मुझे यही लगती हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिस दिन हम उनके इन पंक्तियों को आत्मसात कर लेंगे, मुझे लगता है कि जीवन के प्रति हमारा नजरिया, सफलता पाने का हमारा तरीका बिल्कुल बदल जाएगा, और फिर हम ये फैसला कर सकेंगे कि मुझे जमीन ही चाहिए या आसमान ही चाहिए। दोनों को चाहने की चाहत जिस दिन हम छोड़ करके केवल एक चाहत में जुट जाएंगे, डेफिनेटली उस दिन हमारी चाहत भी मुकम्मल हो जाएगी और पूरी भी हो जाएगी। तो मित्रों, निदा फाजली जी को एक बार फिर से आप सभी की ओर से, अपनी ओर से श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूं, और अब आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर जो एआईआर न्यूज का स्टेज है। दोस्तों, पहली खबर जो सबसे महत्वपूर्ण खबर थी वो आप लोगों ने सुनी, और आज के अखबारों में भी वो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, वो नेट निरपेक्षता की खबर है, जिसको हम नेट न्यूट्रलिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स को शायद याद होगा जो फर्स्ट बैच सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं, नेट न्यूट्रलिटी पर मैंने उन्हें स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किया था। तो बेहतर होगा कि इसको समझने के लिए वो उस स्पेशल ऑडियो को एक बार फिर से सुन ले, उनको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि नेट न्यूट्रलिटी क्या है। और इसके बारे में डेली ऑडियो में हम लोगों ने चर्चा भी की थी और मैं नहीं समझता कि उस पर हम आज फिर से डिटेल में चर्चा करें। न्यूज आप लोगों ने सुनी है, न्यूज़पेपर्स में ऑलरेडी आज इसके बारे में काफी डिटेल में दिया हुआ भी है। इसके भास्कर ने और इकोनॉमिक टाइम्स ने इस पर एडिटोरियल भी लिखे हैं जो आपको नॉलेज सेंटर में आज मिलेंगे भी। और मुझे लगता है कि आप सब तो उस पीढ़ी के लोग हैं जो शायद नेट के, शायद क्या सच यही है कि नेट के बारे में मुझसे भी कहीं ज्यादा जानते हैं। ये नेट न्यूट्रलिटी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट, सच पूछे तो आज की जनरेशन की, आज की सोसाइटी की हम बात करें तो एक नेसेसिटी बन गई है। ठीक उसी तरह से जैसे कि पानी और बिजली आज के समय की जरूरतें हो गई हैं। न्यूज में भी आपने देखा किस तरह की बात कही और जो दैनिक भास्कर ने एडिटोरियल कमेंट भी किया, इसी तरह के शब्द उसमें भी प्रयोग किए गए हैं। ये भारत है, भारत एक गरीब देश है, हर कोई उसकी फीस उसके चार्जेस को शायद बियर नहीं कर पाएगा। लेकिन सोच करके देखिए कि अमेरिका में भी नेट न्यूट्रलिटी को लेकर के एक बहस चली थी और वहां जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे उन्होंने अलग अलग रेट रखने की इस तरह से डिमांड शुरू की थी, तो ओबामा प्रशासन ने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया और वहां नेट न्यूट्रलिटी के जो थ्योरी का जो प्रिंसिपल था आप कह लीजिए उसे एस्टैब्लिश किया कि नहीं, इस पर कोई इस तरह का भेदभाव नहीं होगा। यूरोप के बहुत से देशों में अभी यह बहस चल रही है और सच पूछे तो भारत के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि जबकि यूरोप के जो डेवलप्ड देश हैं उनमें यह बहस अभी चल ही रही है, भारत में हमारा जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है उसने ये फैसला देकर के, सच पूछे तो मुझे लगता है कि दुनिया में भारत की जो एक इमेज है उसे कहीं ना कहीं बढ़ाया ही है। और नो डाउट कि जो जनता है एक लोकतांत्रिक देश में जो पब्लिक की जो सुनी जानी चाहिए और पब्लिक के हितों का जो ध्यान रखा जाना चाहिए उसकी पूर्ति भी हुई है। दोस्तों दो तरह की बातें ज्यादा, पहले तो नेट न्यूट्रलिटी की बात हुई थी, इसके बाद फिर बात होने लगी थी आपको बेसिक्स की बात होती, नेट बेसिक्स की बात होने लगी थी जिसका सीधा सा सिद्धांत यह था। आप मान लीजिए कि जैसे अगर हम दूरदर्शन की भाषा में बात करें तो दूरदर्शन पर, मान लीजिए टीवी पर, टीवी की भाषा में हम बात करें तो टीवी पर मान लीजिए कि 100 चैनल्स आते हैं, राइट। उसमें यह हो गया कि 5-7-10 चैनल्स आपको फ्री है जिसको फ्री बेसिक्स का नाम दिया गया। ये व्हाट्सएप फेसबुक और एयरटेल इन सब लोगों ने इसकी बातों की शुरुआत की थी और करोड़ों रुपए इसकी पब्लिसिटी में खर्च कर दिए। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि ये चीजें फ्री बेसिक्स वाले सिद्धांत को मान लिया जाए, लेकिन अब तो फैसला ही आ गया है, बात खत्म हो गई है। और क्या क्या फैसले हैं वो आप सीधे अखबारों में पढ़ भी लेंगे, उसकी डिटेल्स पर मैं नहीं जा रहा हूं और सच पूछे तो उसकी जरूरत भी मैं नहीं समझ रहा हूं। तो इन लोगों की बहुत कोशिश थी कि ये फ्री बेसिक्स के कॉन्सेप्ट को यहां लागू कर दिया जाए, लेकिन अब तो ट्राई का फैसला ही आ गया। केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी और अब जब ये फैसला आ गया है तो सारी वो जो धूमिल स्थितियां थी या कह लीजिए जो चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी वो क्लियर हो गई है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा काम हुआ है। मित्रों यहां मैं एक चीज आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, वो जो प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं मिस्टर आरएस शर्मा, इनका आप थोड़ा सा नाम याद रखें, आरएस शर्मा। खासकर जो प्रारंभिक परीक्षा होती है तो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, तो प्री में हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में इनका नाम आ जाए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो थोड़ा सा नाम आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं। इसके बारे में दोस्तों मैं फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा। जो दूसरी खबर थी निदा फाजली साहब की थी, न्यूज में थी और उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। डेफिनेटली जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं उनको निदा फाजली साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी विशेष रूप से हासिल कर लेनी चाहिए क्योंकि वो उनका जन्म स्थान ग्वालियर ही रहा है और मध्य प्रदेश से उनका लगाव रहा है। वैसे भी जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं तो निदा फाजली जी के बारे में आज अखबारों में आया है और हो सकता है कि कल परसों भी कुछ चीजें आपको पढ़ने को मिले। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको ध्यान में रखना चाहिए और खासकर इस रूप में तो रखना ही चाहिए कि इनफैक्ट उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन यानी कि एक उर्दू शायरी की दुनिया में और दूसरा फिल्मी गीतों की दुनिया में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन निदा फाजली साहब का यह रहा है कि उन्होंने एक तो गीतों को संस्कार दिए और आप देखेंगे कि इनके गीतों में इमोशंस बहुत हैं, और इमोशंस भी वो रोमांटिक इमोशंस नहीं है जितने कि आपको बच्चों को लेकर के इन्होंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत शेर कहे हैं बच्चों को लेकर के। मतलब बच्चों को हंसाने को इन्होंने खासकर खुदा की इबादत तक का नाम दे दिया है। दूर मस्जिद है तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये निदा फाजली साहब की लाइनें हैं। तो निदा फाजली साहब ने ऐसे इमोशंस को हमारे सामने रखा है जो पहले तो थे लेकिन उतने प्रोमिनेंट नहीं थे। इसी तरह से माता पिता को लेकर के इन्होंने अपने पिता को लेकर के जो खूबसूरत बातें कही हैं उनके निधन पर, मतलब आज भी सच पूछे तो वो इमोशंस के शायद सबसे हाइट पर खड़े दिखाई देते हैं। मां को लेकर के कुछ बातें इन्होंने कही हैं, तो इन्होंने इमोशंस को एक्सपेंड किया, उसे विस्तार दिया, गीतों को, फिल्मी गीतों को एक संस्कार प्रोवाइड किया, फिल्मी गीतों के जरिए जीवन दर्शन को हमारे सामने रखा। मुझे लगता है कि ये इनका बहुत बड़ा निदा साहब का कंट्रीब्यूशन है। नो डाउट कि जो इन्होंने शेर व शायरी लिखी हैं उसमें आपको हिंदी के शब्द बहुत मिलेंगे, मतलब उनको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अरबी फारसी उर्दू का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। वो पूरे के पूरे अपने जो लिखने की जो शैली थी उसे वो हिंदी कविताओं के गीतों के करीब लेकर के आए, तो हिंदी वाले भी बड़ी आसानी के साथ समझ जाते हैं। और जहां अरबी फारसी के शब्द भी आए हैं वो इस तरीके के शब्द होते हैं जिन्हें समझ लीजिए कि वो एक तरीके से हिंदी के ही हिस्से बन गए हैं। तो ये निदा साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विस में जो संस्कृति है, कला संस्कृति, ये भी आपके सिलेबस में है। मित्रों, अब एक जो खबर थी वो डेविड हेडली की खबर थी कि जो मुंबई पर जो आतंकी हमला हुआ था, जो 26/11 के नाम से जाना जाता, 26 नवंबर के नाम से, उसके बारे में अब काफी कुछ चौंकाने वाली खबरें मिल रही हैं। और भारत सरकार शुरू से ये कहती रही है कि किस तरह के कौन से वो आतंकवादी संगठन थे जिनका इससे सरोकार रहा है। तो अब देखिए चीजें उभर कर आ रही हैं, क्या शेप लेती है, तो ये खबर के बारे में ही मैं आपको ये बात बता रहा हूं। आगे अब देखते हैं कि वो किस रूप में ये चीजें हमारे सामने आएंगी। तो आपको डेविड हेडली थोड़ी सी बात मालूम होना चाहिए, क्योंकि मुंबई पर जो हमला हुआ था वो बहुत ही दर्दनाक हमला था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि जैसे ही इसमें ये पता लगेगा कि इसमें पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसियों और उन आतंकवादी संगठनों का हाथ रहा है, भारत तो शुरू से ही कहता रहा है लेकिन वहां की सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है, जबकि बहुत से सबूत भी उसको दिए गए हैं। लेकिन अब यदि इस तरह की चीजें और सामने आई तो डेफिनेटली, जैसे कि पठानकोट के बाद आप देख रहे हैं कि पठानकोट में जो हमला हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान पर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि वो अपने यहां के आतंकवादी संगठनों को नियंत्रण में लाए। डेफिनेटली जो डेविड हेडली हैं इनके बयान के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पर यह दबाव और ज्यादा बढ़ेगा और तब फिर पाकिस्तान को जवाब देना शायद मुश्किल हो जाएगा, तब वो शायद फिर वो एक्शन में आए। और यदि एक बार पाकिस्तान किसी तरह से अपने यहां के आतंकवादी संगठनों के और सेना के दबाव से अपने को मुक्त कर पाएगा तो निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के संबंध धीरे धीरे क्रमशः बेहतरी की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मित्रों, दो छोटी छोटी और खबरें थी, एक दो खबरें थी। पहला तो ये था कि आपने वृद्धि दर के बारे में सुना कि अनुमान लगाया जा रहा है। अब बजट का बिल्कुल नजदीक आ रहा है, आप देख रहे हैं कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, वो उस समय मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 7.6% की जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट, भारत अचीव कर लेगा और ये बहुत बड़ी बात होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छोटा सा स्टडी दिया हुआ है, उसमें शो किया है कि ब्रिक्स संगठन है, आपको मालूम है, पांच देशों से बना हुआ, BRICS, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये पांच देशों ने मिलकर के ब्रिक्स संगठन बनाया है जो काफी चर्चा में है और ब्रिक्स के बारे में आपको मालूम भी होना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में दिखाया है कि जो ब्रिक्स के पांचों देश हैं इसमें जो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया की है, 7.6 दिखाया है उसमें। नेक्स्ट में डेफिनेटली चाइना है। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है मित्रों, आपके जहन में थोड़ी सी ये बात होनी चाहिए, ये सब जो जानकारियां हैं वो आपके आंसर को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देती, मजबूत बना देती है, डेप्थ में पहुंचा देती हैं। उसमें जो चार्ट दिया है उसमें एक बड़ी बहुत अच्छी बात उन्होंने ये दिखाई है कि इस ब्रिक्स के पांच देशों में दो देश ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ रेट माइनस में चल रही है और वो है ब्राजील और रशिया, मतलब बी एंड आर, इनकी ग्रोथ रेट माइनस में और नियर अबाउट 3 परसेंट माइनस में चल रही है। तो ऐसे दौर में आप सोच करके देखिए कि जब ब्रिक्स के दो देश ऑलरेडी माइनस में चल रहे हैं, चाइना भी भारत से पीछे अब दिखाई दे रहा है, पूरे के पूरे विश्व में मंदी का दौर बना हुआ है, यूरोपीय देश खासकर इस संकट से बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं, और खासकर मुझे फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच और थर्ड बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस बार जो उन्होंने स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किया है उसमें दो मैंने बिल्कुल ही अलग तरीके के टॉपिक्स लिए हैं जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, और उनको लेने का पर्पज यही था कि आपका जो स्फेयर ऑफ नॉलेज है, जो एरिया ऑफ नॉलेज है, वो और एक्सपेंड हो, थोड़ा सा दूसरों से हटकर हो। उसमें आपको सुनने को मिला होगा, पहला तो मैंने यही लिया था कि यूरोपीय देशों में खासकर जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज जो इमर्ज हो रही हैं उसके कारण क्या हैं। आपने सुना होगा कि उसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि उनके अपने यहां बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी का दौर आया है जिसके कारण राइटिस्ट जो फोर्सेज हैं वो स्ट्रांग हो रही हैं, और दूसरा मैंने उसमें लिया था सऊदी अरब और ईरान के बीच जो तनाव पैदा हो रहा है, और उसके माध्यम से थोड़ी सी ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा हमारा मध्य पूर्व एशिया है वो सिया और सुन्नी के आपसी संघर्षों के कारण उलझा हुआ है, और इसकी वजह से जो वहां आतंकवादी संगठन है उनको मजबूती मिल रही है। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब ये कि एक ऐसे समय में जबकि यूरोपीय देश आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, भारत का 7.6% अचीव करना कम बड़ी बात नहीं है। तो मैंने आपको सिनेरियो दिया है क्योंकि हम एक तो इंडिपेंडेंटली चीजों को देखते हैं तो हो सकता है कि हम उसके महत्व को ना समझ सके। अगर आप भारत के ही बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप दुनिया के संदर्भ में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे माहौल में अगर हम 7.6% अचीव करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सिविल सर्विस की तैयारी के लिहाज से मित्रों आपका नजरिया भी बिल्कुल इसी तरीके का होना चाहिए। इसके बाद आखिरी एक जो सूचना थी वो थी कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो शुरू किया गया है पब्लिक स्पीक के अंतर्गत, वो आकाशवाणी से वो प्रसारित होगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली इसके बारे में हमारे स्टूडेंट इस घटना को, इस प्रोग्राम को जरूर सुने। दोस्तों, कल के IR न्यूज के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज पेपर्स पर। न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स नॉलेज सेंटर में अवेलेबल हैं, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन दो क्लिपिंग्स के बारे में मैं आपसे विशेष रूप से बात करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। एक, और ये दोनों क्लिपिंग्स टाइम्स ऑफ इंडिया की हैं, उसमें एक है मित्रों टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल कमेंट है जो खासकर GM फसलों को लेकर है, जेनेटिक मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं उसको लेकर के। और आप लोगों को ध्यान होगा कि लगभग पिछले शायद 4-5 दिन पहले मैं GM फसलों पर मैंने कुछ आपको क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड की थी। दोस्तों, GM फसल पर अगर कोई भी कुछ भी आपको पढ़ने को मिलता है तो आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, और मैं चाहूंगा कि आपका ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिस पर आप धीरे धीरे चीजें इकट्ठी करते रहें, यानी कि नोट्स बनाते रहें। इसकी शुरुआत आपको मालूम है कि जो BT कॉटन में जो हुआ था उससे हुई थी, और अभी जिसको लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया ने एडिटोरियल कमेंट किया है उस, वो है दोस्तों सरसों के क्षेत्र में एक GM तैयार किया गया है, GM क्रॉप तैयार किया गया है, उसका नाम है DMH11। स्पेशली मैं इस वर्ड को फिर से रिपीट कर रहा हूं, या आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, DMH11 ये इसका नाम है, जैसे कि कॉटन के बारे में BT कॉटन था, और BT कॉटन पर अगर आप पुराने सिविल सर्विस के पेपर उठा करके देखेंगे तो स्पेशली पूछा भी गया था, प्री में भी पूछा गया था, मेंस में भी पूछा गया था। उसी को आधार बना करके मैं ये मान सकता हूं कि इस जो मस्टर्ड के फील्ड में हुआ है इसको, इस पर पूछा जा सकता है। अभी ये अप्रूव नहीं हुआ हो पाया, जो कमेटी है इसको अप्रूव करने वाली एक कमेटी बनी हुई, जिस कमेटी का नाम है जीनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, GEAC नाम आपको मालूम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है जो अप्रूव करती है, उसने इसको अप्रूव करने से मना कर दिया। और आपको मालूम है कि GM फसलों को लेकर के भारत में लगातार एक बौद्धिक विमर्श, एक तरह से वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो जी, ये दोस्तों आपने देखा होगा कि अखबारों में इसको लेकर के कोई बहुत खबरें नहीं आई हैं, अगर आई भी होंगी किसी अखबार में तो अंदर कहीं छोटी मोटी खबरें होंगी, और स्वाभाविक रूप से जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनसे फिर ऐसी चीजें कहीं ना कहीं मिस भी हो जाती हैं। इसलिए मैं इसे बार बार आपको हाईलाइट कर रहा हूं। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसे अपने में लिया है, एडिटोरियल कमेंट में लिया है, तो उसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं। ये अभी आपको नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल होगा, इसकी डिटेल्स आप पढ़ लेंगे, वक्त नहीं है कि मैं डिटेल्स बताऊं। इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया का जो दूसरा आर्टिकल है दोस्तों, वो रोमेश वाधवानी जी का है, जो अपने आप में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उन्होंने खासकर भारत में रोजगार की संभावनाओं को लेकर के ये आर्टिकल लिखा है, और उसमें उन्होंने 6 उपाय बताए हैं जिससे भारत में रोजगार की स्थिति पैदा की जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये जो 6 पॉइंट इन्होंने दिए हैं, ये 6 पॉइंट आपको अलग से नोट कर लेने चाहिए, ताकि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछे तो इसमें से जो भी पॉइंट आपको ठीक लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सके। ये भी नॉलेज सेंटर में अवेलेबल है। मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो सबसे पहले मैं दो दोस्तों के नाम बता रहा हूं जो अभी फरवरी के बैच को ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। मैं उनके स्थान और उनके मोबाइल नंबर आपको बताने जा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक फ्रेंड है प्रवेश कुमार मलिक, जो बागपत और विशाखापट्टनम से आ रहे हैं, मतलब तो एक ही जगह से रहे होंगे, मतलब जो स्टूडेंट बागपत और विशाखापट्टनम से आ रहे हैं वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रवेश कुमार का मोबाइल नंबर है 8008711972 6। जो दूसरे फ्रेंड हैं उनका नाम है योगेश कुमार साहू, आप कोरबा छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। योगेश का मोबाइल नंबर है 7898969048। मित्रों, मेरे पास एक दो नाम और आए हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन चूंकि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैं उनके नाम की घोषणा यहां नहीं कर पा रहा हूं। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि जब तक आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, नाम की घोषणा करना संभव नहीं हो पाएगा। और वो मैं आपको बता चुका हूं कि आपका अपना नाम होना चाहिए, जिस स्थान से आ रहे हैं वह होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का भी उल्लेख उसमें होना चाहिए। तो मित्रों, अब मैं आता हूं उस पर जिन्होंने मेल लिखे हैं, और उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं, साथ ही साथ आभार भी व्यक्त करता हूं उनके मेल लिखने के लिए। और निश्चित रूप से आप सबके जो मेल आते हैं, डेफिनेटली फ्रेंड्स, सारे मेल के नाम लिखने वालों के नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं होता, लेकिन एक एक मेल आपका ध्यान से पढ़ा जाता है, और उसी के माध्यम से फिर मैं अपने ऑडियो में उन चीजों को शामिल करता हूं, भले ही आप उन बातों को पकड़ ना पाए। इसलिए आपके जो मेल हैं हम लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज आप अपनी बातें हम लोगों तक पहुंचाते रहें। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबके प्रति बहुत बहुत आभार। और इनमें से कुछ मित्रों के नाम मैं ले रहा हूं, वो हैं इंद्र देव गुप्ता, संतन कुमार दिल्ली, अमित कुमार, मितेश केशरी, चंद्रभूषण यादव जौनपुर, प्रशांत कुमार पटना, रामू बर्मन, धवल परमार हिम्मतनगर गुजरात, अंकिता कुरुक्षेत्र, संगीता चौधरी, सोनू कुर्मी, युवराज सिंह न्यू दिल्ली, रजत बोलपुर, नम्रता भारती, कृष्णानंद कुशवाहा अनूपपुर मध्य प्रदेश, शिवम वरुण, पल्लवी सिंह, रंजन अवधेश कुमार यादव और विष्णु मीना जयपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसमें से जो बेस्ट मेल जो मैं सेलेक्ट मैंने किया है वो है रामू बर्मन, जो नागांव असम से हैं। तो रामू, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।